السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ توبہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7-16. ٹاپک ہے اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ. مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے. جب تک کہ وہ لوگ تم سے عہد نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابداری کا خیال کرے نہ عہد و پیمان کا. اپنی زبانوں سے تو یہ تمہیں پرچا رہے ہیں یعنی صرف خوش کرتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے کیونکہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا. بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق یعنی بالکل لحاظ نہیں کرتے. یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لے, اوپر تو ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ کو ان پہ غصہ آ رہا ہے, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا پھر بھی توبہ کر لیں. یہ ہے سورۃ توبہ. آپ گنیے گا ذرا اس صورت میں توبہ کا لفظ کتنی دفعہ ہے, کتنی دفعہ تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کا اتنا انتظار کرتے ہیں جیسے ایک شخص جس کا سامان راستے میں گم جائے, اس کے اونٹ پہ سب کچھ تھا اور اونٹ ہی چلا گیا اور اس کی جان کے لالے پڑ گئے اور ڈھونڈ 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 کر بعد میں بالآخر اس کو وہ اونٹ مل جائے. اللہ اس سے زیادہ اپنے بھٹکے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں. اگر آپ بھی کسی چیز میں بھٹک چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتظار ختم کیجیے. آپ کو ایسے اللہ لے گا جیسے شاید کوئی آپ کو بہت محبت کرنے والا بھی نہ لے. اب سنیے, اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ. ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں, ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی یعنی انہوں نے جنگ شروع کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. ان سے تم جنگ کرو, اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا, انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا, تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا. مسلمانوں کے کلیجے انتقام لے کر نہیں, دوسروں کو اسلام کی طرف آتے دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں. اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا اور وہ جس طرح چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ام حسب تم انتترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. سبحان اللہ. ان سارے حصے میں بلکہ اگر آپ پورا ہی یہ رکوع دیکھیں نا تو اصل میں اس میں کچھ ماہدوں کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرگنائزڈ انسان تھے. آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا جانتے تھے, کس کے ساتھ کب کہاں کیسے کتنی بات کرنی ہے نہیں کرنی, کس سے ڈیل کرنا ہے نہیں کرنا, آپ اس کو خوب جانتے تھے. اگر آپ چاہیں تو رہبر کامل میں سے اللہ کے نبی کا یہ روپ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے اکثر غلطی کھا جاتے ہیں. اب ہے کیا کہ اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے تو مکہ میں تو سب اپنے تھے, قریشی تھے. جب مسلمان مکہ سے مدینہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف قریش اور مدینہ کے یہود اکٹھے ہو گئے. پہلے اتنی بات سمجھی, کچھ معاہدے ہو گئے, کچھ معاہدے ایسے تھے جو اللہ کے نبی نے بھی آ کر کیے. ان ساری باتوں میں سے ہمیں جو اپنے لیے عمل کی بات ہے کہ معاہدوں کو پورا کیجئے, سوچ سمجھ کے معاہدہ کیجئے. کوئی بھی کمٹمنٹ کریں تو اس کو نبھائیے. अब कुरैश का हाल क्या था कि जो जो मुसलमानों को उरूज मिलता गया, उनको एक खौफ आ गया कि मुसलमानों का उरूज हमारी क़यादत छीन लेगा। हर दौर में ऐसे ही होता है। ज़रा कोई बंदा निकलता है, लोग कहते हैं इट्स ओके, ज़रा सा और थोड़े थोड़े और थोड़े और लोग जानते हैं, ज़रा से ज़्यादा लोग उसको जानने लगे ना, तो पहले से जो लोग वही सेम काम कर रहे होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं। ये कारोबार में भी होता है, हम पेशा दुश्मन हमेशा। ये स्कूल कॉलेजेस में भी होता है, एक स्टूडेंट आगे आता है तो बाकियों को गम पड़ जाता है। और अफसोस की बात है कि ये दीन के नाम पे भी होता है। अल्लाह के नबी के साथ जो हसद था मदीना वालों का, वो यही था। यहूद का हसद ये था कि अगर ये आ गए तो हमें कौन पूछेगा, और अगर इनके साथ इतने लोग आ गए तो हमारे लोग तो इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। तो पीछे चूंकि सूरत के आगाज़ में 4 माह की मोहलत देकर कुछ मायदों को तोड़ने की बात थी, इनमें से ही कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका यहाँ तस्करा। बस इतना समझ लीजिए, माशरती ज़िंदगी किसी सोसाइटी में किसी भी समाज में रहने की 2 बुनियादें होती हैं, एक रिश्तेदारी या कौलो इकरार, जिनसे रहमी रिश्ते मुराद हैं, आपके मेरे खून के रिश्ते। हम इन्हीं रिश्तों की बुनियाद पे हर वक्त अपने प्यारों को जानते हैं। ये हफ्ते को जो बेटियां माओं के घर जाती हैं वो इसी रिश्ते की बुनियाद पे जाती हैं। हम अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमारी कमिटमेंट्स हैं। आपके हस्बैंड्स की अपनी जॉब वालों से कमिटमेंट है, आपकी मेड की आपसे कमिटमेंट है, आपकी भी उससे कमिटमेंट है कि अब मैं इसको ऐसे नहीं करूँगी, आपने ये घर किराए पर लिया, किराए के घर पर कमिटमेंट है। इन सारी चीज़ों को कभी भी ईजी और नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमने सूरह मायदा में भी पढ़ा था उफू बिलकूद, तो मोमिन की ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी और मोमिन प्रिडिक्टेबल होता है। एक जुमला लिखिएगा, उर्दू में भी अभी बोल देती हूँ, मोमिन शुड बी प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्ट कहते हैं पेशन गोई की जाए। मोमिन के बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए कि वो इस वक्त क्या करेगा। ये जो बड़ी अनयूजल किस्म से रिएक्शंस होते हैं ना हमारे, ये दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुश्मनी और उनकी ज़िद की सारी बातें करके मुसलमान को बता दिया कि अगर तुम्हें हिकमत हुई और दानाई हुई तो तुम्हारे अंदर इस बात का एतराफ़ ज़रूर पैदा होगा और इसका शऊर ज़रूर पैदा होगा कि मैंने अल्लाह के नाम पे कभी किसी को धोखा नहीं देना। और हिकमत और दानाई का सिरा अल्लाह का डर है। तकवा इख्तियार करेंगे तो बाकी काम सब ठीक हो जाएंगे। जब आप अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते हैं ना, पता नहीं कहाँ से अल्लाह आपको हिकमतें देता है। जैसे गलत चीज़ देखने वालों को आइडियाज़ आने लगते हैं। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे बाहर जा रहे हैं, चलो गाड़ी के टायर की हवा निकाल देते हैं ना, उस उम्र में शरारतें अच्छी लगती हैं। जितना ये आपके अंदर हिकमत और दानाई तकवा के रास्ते आएगी, आपके अंदर एतराफ का मादा पैदा होगा, आप बशऊर हो जाएंगे। और जिसके अंदर ये आ गया उसको अल्लाह ताला का प्लान समझने में देर नहीं लगती, इशारों से पता चल जाता है कि अल्लाह इस वक्त क्या चाह रहा है। आप देखिए कि हम हर वक्त किसी न किसी फैसले में होते हैं, हर वक्त हमारे जहनों में कुछ चीज़ें होती हैं, फिर हम गलत करें ठीक करें, किससे पूछूं किसको ना पूछूं, ना इशारों से पता चल जाता है कि अल्लाह आपको किधर ले जाना चाहता है। हज़रत मूसा जब मिस्र से निकले थे उनको नहीं पता था मैं मदीन जाऊंगा, जब मदीन से वापस मिस्र आ रहे थे उनको नहीं पता कि मैं अब नबूवत के लिए चुना जा रहा हूँ। तो जो बंदा अल्लाह ताला की रज़ा पे नजरें रखेगा ना, अल्लाह खुद उसको उसकी मंजिल दिखाएगा। जिनको अपनी मंजिलों की तलब होती है, जिनको खुद यकीन है कि हमने कुछ करना है, मंजिलें उनको बुलाती हैं। और सब के पीछे डर, अल्लाह का डर, तकवा, क्योंकि अल्लाह का डर इंसान की आंखों को अश्कलूत कर देता है। मगर अल्लाह के लिए भीगी हुई आंख ही वो आंख है जिसके लिए ये मुकद्दर है, किसको ठंडक होगी दुनिया में भी और आखिरत में। यशफी सदूर की बात हुई थी ना, ईमान वालों के सीने आज भी ठंडे हैं, चाहे जंगें लगी हैं, चाहे महंगाई है, चाहे गुर्बत है, चाहे दुनिया में कोरोना फैला है, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। आपको मुझे इस वक्त अपनी ज़िंदगी को किसी एक मकसद पर ले आना चाहिए। ये हमने पूरी ज़िंदगी ना ट्रायल एंड एरर किया है। एक तो फितरी था, पहले हम बच्चे थे फिर बड़े हो रहे थे, हमारा स्टेटस बदल रहा था ना वक्त के साथ। आप सोचिए कि 20 साल की उम्र तक मोस्टली दिल्ली वालों की शादी होकर 2 बच्चे भी हो चुके होते हैं, लड़के भी बेचारे बाप बन चुके होते हैं, उन्हें समझ भी नहीं होती बाप होता क्या, लेकिन बन जाते हैं, है ना। अब मेरी बात को समझिएगा, 20 साल से ऊपर के लोगों की लाइफ अब क्या करें। पीछे तो सबको पता है ना चेंजेस, कभी दांत टूट रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी बाल झड़ रहे, कभी कुछ, पैदा होने से लेके 20 साल तक अल्लाह ने आपको रोलर कोस्टर से गुजारा, कभी स्कूल गए पढ़े ये कर लिया। मेरी इस बात का ताल्लुक उनसे है जो 20+ है, और कुछ औरतें 40 साल की भी हो जाए वो 20+ ही होती हैं। 20+ 20 है, लेकिन हैं तो 20+ ना, है ना। जब आपकी ज़िंदगी एक स्टेबल हो जाए, और हमारे कल्चर में अमूमन शादी और बच्चे, पता चल गया भाई यही शख्स मेरे नसीब में था और इसी के नसीब में मैं थी और ये बच्चे हैं ये घर वाले हैं। अब लाइफ चलती जाएगी, एक आध बच्चे का इजाफा हो जाएगा 2-4 सालों में, बट वी नीड टू मेक एनी गोल ऑफ आवर लाइफ। इसको अगर अपने मकसद बना लिया ना, वो फुरकान मिलेगा, जिंदगी का वो खूबसूरत नक्शा मिलेगा। और जो मैंने अगली बात बता दी ना, आपने खिल जाना है, सीधे होके बैठ जाना है, आपकी उम्र कभी बढ़ेगी नहीं। यू विल ऑलवेज फील लाइक 20+, चाहे आप 50 के हों, 60 के हों, 20 के हों, 40 के हों, आप 20+ पे रहते हैं, आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। क्योंकि उसके बाद जैसे आप खाने को फ्रीज कर लें तो उसकी जो कैफियत होती है वो वैसी जम जाती है ना, जिस तरह से अगर आप सांचा रखें बर्फ़ वैसी जमती है ना। आप जहाँ अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं ना एक काम को, अब वो लेट बनाने वालों को फिर कई मसले पहले से शुरू हो चुके थे वो तो रहेंगे, घुटनों में दर्द रहेंगी, जिस्म दर्द करेगा, परेशानियाँ भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन जिसने जितनी जल्दी पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढा और उस पर जम गया, फिर उसके लिए रास्ते में तकाजे भी आएंगे, मसाइल भी आएंगे। लेकिन अगर इंसान को अपना मकसद असीज होता है, सब मसले ख़त्म, सारे तकाजे ख़त्म, फिर इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में अपनी सारी एनर्जी जो है ना उन मसाइल को अबूर करने और उन तकाजों को पूरा करने में लगा देता है, फोकस्ड होता है। इसका नाम जिहाद है। दैट इज़ जिहाद, दैट इज़ स्ट्रगल, अटमोस्ट स्ट्रगल। और ये जिहाद इस दुनिया में हर एक को पेश आना। जो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं करेगा ना, उसको जिहाद फी सबीली शैतान करना पड़ेगा। जो जिहाद फिल आखिरा नहीं करेगा ना, या फी सबीलिल आखिरा नहीं करेगा, उसको जिहाद फिल दुनिया करना पड़ेगा। हर इंसान अपनी इस कोशिश में लगा हुआ है। आज भी देखिए कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ रोज़ी रोटी है। मोमिन दुनिया की राह में नहीं, आखरत की राह में जिहाद करता है, और फाजिर गैर मोमिन इस दुनिया के जिहाद में। असल में ये जिहाद के मौके आते हैं, क्योंकि ये सूरत तौबा अब वो सूरत है जिसपे हम अभी के इस पूरे पोर्शन में आखिरी बार बात कर रहे हैं, फिर कहीं जाकर ये सारी बातें आगे शुरू होंगी अगले पोर्शन में। हर जिहाद ये साबित करता है कि आप अपने मकसद से कितने संजीदा हैं। ये दौरे कुरान करना कराना भी एक जिहाद था। अल्लाह ने आपको मुख्तलिफ मराहिल में डालकर, छांट कर, लोगों से मिलाकर, को निकाल कर, कुछ को डालकर चेक करना है कि आप में से कौन सच्चा है। हम जब कलमा पढ़ते हैं, ईमान का दावा करते हैं ना, तो बार बार हमारी ज़िंदगी में मराहिल आते हैं। ये जो नमाज है ना फजर, ये रिवाइवल ऑफ योर फेथ है। स्टिल आई एम मुस्लिम, अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। 5-7-8 घंटे गुजरते हैं तो जोहर की नमाज़ आती है, हैया अलैस सलाम, हैया अलल फलाह। आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, आई एम स्टिल मुस्लिम। अब एक जुमला लिखिए, बहुत खूबसूरत जैम बनेगा इस बारे का, और मैं भी सोच के होश हो रही हूँ कि इसके सैकड़ों जैम्स आने हैं बन के। मोमिन के ईमान की रिवाइवल होती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। हर नमाज के बाद अगली नमाज ईमान की तजदीद है कि ये बंदा अभी भी मोमिन है। हर रमज़ान से अगला रमज़ान, ये जो कफ़ारात है ना लिमा बैना हो, वो यही है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आपके मुल्क में आपका आईडी कार्ड कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। हर 5 साल बाद आपको जाकर दोबारा देकर नया लेना होता है। पासपोर्ट में चॉइस देंगे आपको, 5 साल का बनाएं, 10 साल का बनाएं। हमारे डॉक्यूमेंट्स रिवाइज होते हैं। आप इस घर का एग्रीमेंट करते हैं, किराए पे लेते हैं, तो 1-2 साल का एग्रीमेंट है ना। दुनिया में जिस तरह एग्रीमेंट को रिन्यू कराना होता है ना, हर हुक्म अल्लाह की तरफ से जो आता है, इताअत करो, बात मानो, इस्तजीबु लिल्लाह व लिर्रसूल, पिछले हिस्से में पढ़ के आए सूरह-ए-अनफाल में। ये आपकी रिवाइवल ऑफ इस्लाम होती है। ये जो हजरत इब्राहिम का नाम पीछे पढ़ कर आए ना कि इस काल लहु रब्बु अस्लम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, और सूरह सौफात में जाकर आप पढ़ेंगे फलम्मा अस्लमा, अब बाप के साथ बेटे की भी रिन्यूअल होने लग गई फेथ की। बस इसको समझिएगा, ये दावे जिहाद कहलाते हैं। मोमिन कभी केयरलेस नहीं हो सकता, एक ऐसे ड्राइवर की तरह जो रश में ड्राइविंग कर रहा हो, एकदम हैंड ब्रेक लगानी पड़ेगी और सो ऑन। तो लिहाजा आपका ईमान आपसे तकाजा करता है कि आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, हसद, ऐसे जज्बात आएँ, आप औज़ु बिल्लाह पढ़ के आगे निकल जाएं। टाइम ही नहीं है हसद करने का, गीबत का वक्त ही नहीं है, मूड ही नहीं है, और होते होते वो इतना खूबसूरत इंसान हो जाता है। और ईमान का एक तकाजा ये होता है कि अपनी ज़ुबान को पकड़ कर बंदा कहता है नहीं बोलना, चुप करके बैठ। गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाते जल्दी तो बहुत है आपको जाने की, घर रोजा खुलने वाला है, एयरपोर्ट पे पहुंचना है, लेकिन आप हैंड ब्रेक लगाते हैं क्योंकि आगे क्लूजन है। जहां जिंदगी में क्लूजन आने लगे, टकराओ, आप अपनी जुबान को पकड़ के कहते हैं आराम से बैठो, सब्र करो, किसी ने कुछ कह दिया फिर कहने दो, किसी को आपकी ये बात बुरी लगी तो लगी है, सॉरी कह लो जाके, बस इसके बाद आपका ईमान आपको एक ऐसा खूबसूरत इंसान बना देता है कि आप किसी को बुरे नहीं लगते। और इसी दौरान फिर आप मुस्लिम से मुजाहिद, मोमिन और हत्ता के मोहसिन बन जाते हैं। इसको वलीजा कहा के इस हिस्से में, किसी वादी के उस गार को वलीजा कहते हैं जहाँ रास्ता चलने वाले बारिश वगैरह से बना लेते हैं, मोमिन मोमिन के साथ बना लेता है। देखिए हमें हर वक्त एक दूसरे की ज़रूरत है, कभी नहीं हो सकता कि आप कहें जी मुझे नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत और मैं कह दूं जी मैं तो बेनियाज हूँ हर चीज़ से, ये नहीं होता। नबियों ने भी कहा था मन अंसारी इलल्लाह, नबी ने भी कहा, हज़रत ईसा का कॉल हज़रत सूरह सफ़ की आखिरी आयत में जाके पढ़ लें, कौन है अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार। अब जब इंसान इस दुनिया में किसी बहुत बड़े काम को एक मकसद बनाता है तो लाजिमन कुछ टिप्स हैं, 1 2 3 करके नोट कीजिए, आपके मेरे काम की बातें हैं। पहली बात है कि बड़े काम अकेले नहीं होते, पक्की बात है। मैं अपना घर अकेले चला सकती हूँ लेकिन मैं आपका इदारा अकेले नहीं चला सकती, और अगर इस इदारे को चलाना है और मैं हर चीज़ को हर जगह अपने लेवल से करूं तो फिर मैं इधर ही बैठी रहूं क्योंकि मेरे पास दूसरी जगह जाने का ना वक्त है ना फुर्सत है। ये जो हमारी ज़िंदगी इतनी स्टेबल होती है ना अपनी अपनी जगहों पे, हम अपने घर में होते हर चीज़ जगह पे होती है, आपको तो इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है। कुटिया में एक बंदा बैठा हुआ है और वो अपनी अलमारी खोलता और चीज़ निकाल लेता है, कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा आपको कहाँ होता है? जाके हज पे जाते हैं, उमरे पे जाते हैं, मीना से मुजदलफा, इधर से सफर में हमेशा बंदा जगह से भी जगह हुआ होता है ना। तो ये जब आप देखते हैं ना कि मैंने कोई बड़ा काम करना है, तो नंबर एक आज से इसको अपनी जिंदगी की हिर्से जान बना ले, अपने मकसद की मरकजियत से वाबस्तगी, एफिलिएशन लिख लें इंग्लिश में, यू हैव टू एफिलिएट विद एनी वन हु इज द मेन सोर्स टू गिव यू दैट पर्पस। अपने ही जैसे किसी बंदे, किसी गिरोह, किसी प्लेटफॉर्म से जाकर जमा हो जाइए। नंबर दो, अपने कायद का मुकम्मल वफादार हो, लीडरशिप पे इतना ट्रस्ट हो जितना, बल्कि उससे भी ज्यादा, जितना पायलट पे आपको यकीन होता है कि ये जहाज गिरा नहीं देगा। कभी नहीं आपने मैंने पायलट का जाकर कोई फॉर्म या उसका कोई सर्टिफिकेट देखा, बैठ जाते हैं दिन रात जहाजों में जाते हैं। या इतना यकीन हो कि आप एक बेड पे, जिसको बोलते हैं स्ट्रेचर, आप बेहोश हो जाते हैं एक शख्स के यकीन पर कि ये डॉक्टर है और ये मुझे बेहोश करने के बाद मुझे बीमार नहीं सेहतमंद करेगा, मेरा ऑपरेट करेगा, यानी ट्रस्ट के बगैर बात नहीं बनती। और तीसरी चीज़, उस रास्ते के साथियों के साथ इस तरह जुड़ जाए कि अगर उनमें से किसी एक को हटाया तो सारी चीज़ जो है वो बेकार हो जाएगी। बस ये तीन चीज़ें अपने दिल के साथ लिख लीजिए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आखिरी वक्त तक बड़ी खूबसूरत होगी। फिर आप बार बार जगह नहीं बदलेंगे, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेन चेंज करूं ये करूं, और इसके बाद ही आप बामकसद इंसान बन के संजीदा बनेंगे। इसके बगैर बामकसद ज़िंदगी का दावा बिल्कुल झूठ है। ये जो नेकियां करनी, कभी इधर जा वो कर लिए, ये भी अच्छा होता है लेकिन ये चस्का भी होता है मूड चेंज के। कभी हमारा दिल कर रहता है हम नमाज़ें ही पढ़ते रहें, कभी हमारा दिल कर रहता है सोशल वर्क ही करते रहें, कभी हमारा दिल कर रहा है उम्रे पे, घर आप अभी तो गए थे, नहीं फिर दिल कर रहा है। ये किस्म का रोटेटर है बट स्टेबल बंदा, रोटेशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी नेकियों को इंशाल्लाह कल बढ़ाएगी। और इन सारी आयात से अल्लाह ने आपको मुझे ये बताया कि अल्लाह और उसका रसूल और अहले ईमान उसका वलीजा बन जाए, हर एतबार से उनसे जुड़ जाए, संजीदगी के साथ दीन इख्तियार करने वाले अल्लाह और रसूल और अहले ईमान अमली तौर पर एक ऐसी यूनिटी बन जाते हैं, ऐसी वहदत बन जाते हैं कि जिनके दरमियान तकसीम मुमकिन नहीं। आप देखिए H2O को मिलाएं, H2O किया है वाटर, H2O 2% हाइड्रोजन 1% ऑक्सीजन, अलग करिए तो ऑक्सीजन भी जलाती है, हाइड्रोजन जलवाती है, कैटलिस्ट है, दो जलने और जलाने वाली चीज़ें आपस में मिलके पानी हो गई, ये है वलीजा। सास जलाती है, बहू जलती है, दोनों को जोड़ दीजिए पानी हो जाएंगे, बड़े बड़े झगड़े खत्म, मसले खत्म, लेकिन ये बहुत नाजुक मामला है। याद रखिए, जब आपको ये यकीन होता है ना कि मेरा इम्तिहान लेने वाली वो हस्ती है जो अलीमुम बिदाती सुदूर है और अंदर बाहर की बातें जानता है, फिर तो ये मामला और भी संजीदा होता है। अल्लाह करे कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, गो के अंदाज़े बयां शोख नहीं है। अब आइए ज़रा सहाबा कराम पे। सहाबा कराम को इतना आजमाया क्योंकि आप सारी बात समझ आ गई आपको। इतनी आजमाइशों और इतनी भट्टियों से गुजारे बगैर अगर अल्लाह के नबी अपनी टीम बदर के मैदान में ले आते, यकीनी शिकस्त थी, यकीनी तौर पे मुसलमानों की रसवाई होनी थी। इसीलिए फरमाया मुहसिब तो मन तुत रखो, क्या तुम्हें बगैर आजमाइश के छोड़ दिया जाएगा। आजमाइश मोमिन और मुनाफिक के फ़र्क के लिए होती है, लोगों को खालिस करने के लिए होती है। और सूरह तौबा तो बिल्कुल छलनी है, इसका एक नाम लिख लीजिए, छलनी स्ट्रेनर है। ये इधर सारे मोमिन निकल जाएं, इधर सारे मुनाफिक निकल जाएं, इधर सारे पकड़ के निकाल दें। अब ऑरेंज जूस निकाले ना, जूस सारा नीचे, पल्प सारा एक साइड पे, बीज सारे एक कोने पे, सारे बीजों को पकड़ के फेंक दो और बाकी चीज़ों को फ़ायदे में रख लो। यही करते हैं ना। तो रज़ा इलाही को पाने वाले बड़े ही खूबसूरत अमाल हैं इस रुकू में। तकवा, तकवा, ये मैंने जितनी कहानी छेड़ी है ना, ये इसकी रूट तकवा था। तकवा से फुरकान, फुरकान से फिर अगले सिलसिले। फिर दूसरी बात मकसदियत, अपने मकसद का यकीन, लीडरशिप पे एतमाद, मरकज़ से वाबस्तगी और साथ काम करने वालों के साथ वलीजा का ताल्लुक, अल्लाह और रसूल को वली मानना, कुफर के अलमबरदारों से जिहाद करना। फिर ही तो गोल बनाएंगे ना कि किधर काम की ज़रूरत है, किधर कुफर ख़त्म करना है, किधर से शिर्क ख़त्म करना है, किधर से फिस्क ख़त्म करना है। और फिर जो कमिटमेंट की उसके अहद निभाने और ज़्यादती नहीं करनी। और दीन के मामले में कराबत का लिहाज नहीं करना, यानी अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह, और मोमिनीन को दिली दोस्त बनाना।